हाँ यही है।
जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन। यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौरांग बोलो निताई गौरांगो। निताई गौरांग बोलो निताई गौरांगो। निताई 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 गौरांगो। निताई गौरांग बोलो गौर हरि। निताई गौरांग बोलो गौर हरि। राधागिरीधारी जय राधागिरीधारी राधागिरीधारी जय राधागिरीधारी जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा मैया जगन्नाथ नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल हरि जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय 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 गुरुदेव 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 जय जय निताई गौर प्रेमानंदे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 33 दसम स्कंद का तीसरे अध्याय का ये 33वां श्लोक है। कृपया आप लोग श्लोक मेरे पीछे दोहराइएगा। युवा वै ब्रह्मणादिष्टौ ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः संयमयेन्द्रिय संयमयेन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तप युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ युवां वै ब्रह्मणादिष्टौ प्रजा सर्गे यदा ततः प्रजा सर्गे यदा ततः संयम इंद्रिय ग्रामम संयम इंद्रिय ग्रामम ते पाते परमं तप ते पाथे परमं तप युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा तत संयम्येन्द्रिय ग्राम ते पाथे परमं तप प्रजा सर्गे यदा तत नम ते पाथे परम माताजी युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा तत संयम्येन्द्रियं ग्रामं संयम्येन्द्रिय ग्रामं ते पाथे परमं तप युवां वै ब्रह्मणादिष्टो प्रजा सर्गे यदा तत संयम्येन्द्रिय ग्रामं ते पाते परमं युवा तुम दोनों प्रश्नी तथा सुतपा वै निसंदेह ब्रह्मणा आदिष्टौ ब्रह्मा जो पितामह या प्रजापतियों के पिता कहलाते हैं उनकी आज्ञा से प्रजा सर्गे संतान उत्पन्न करने में यदा जब ततः तत्पश्चात संयम्य पूर्ण नियंत्रण में रखते हुए इंद्रिय ग्राम इंद्रियों को ते पाथे की परम महान तपह तपस्या। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज ने दिया है। श्रीला प्रभुपाद की प्रभुपाद जी अनुवाद इस प्रकार बताते हैं, जब भगवान ब्रह्मा ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया तो तुम दोनों पहले ने अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए कठोर तपस्या की। तात्पर्य थोड़ा बड़ा है, विस्तार पूर्वक है, कृपया ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये श्लोक का जो वास्तविक तात्पर्य है वो काफी कठिन होता है, लेकिन हर एक को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। जिन्हें जिन्हें भगवत धाम निश्चय ही जाना है उनके लिए तो अति आवश्यक है, और कुछ जन्म निकालना है पृथ्वी पे तो ठीक है, थोड़ा कम सीरियस रह सकते हैं। तो सीरियस लोगों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, और अच्छा यही कि प्रभुपाद जी मुख से ही ये तात्पर्य समझे, बाद में विश्लेषण करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन ये तात्पर्य ऐसा है कि इनके मुख से ही सही है, जो प्रैक्टिस करते हैं उनके मुख से आता है तब अच्छा होता है। तात्पर्य यहाँ पर यह आदेश है कि संतान उत्पत्ति करते समय इंद्रियों का किस तरह उपयोग किया जाए। वैदिक नियमों के अनुसार संतान उत्पन्न करने से पहले इंद्रियों का पूर्ण नियंत्रण करना चाहिए। यह नियंत्रण गर्भाधान संस्कार के माध्यम से पूरा होता है। भारत में विविध यांत्रिक विधियों से गर्भ निरोध करने पर बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है, किंतु जन्म पर कभी यांत्रिक विधि से नियंत्रण नहीं किया जा सकता। जैसा भगवद गीता में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। श्री श्री राधा गिरिधारी जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की, श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेम आनंदे। जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग ये इस भौतिक जगत के मुख्य दुख है। लोग जन्म को नियंत्रित करना चाह रहे हैं, किंतु मृत्यु पर नियंत्रण करने में असमर्थ है। और यदि हम मृत्यु को नियंत्रण में नहीं कर सकते तो जन्म को भी नियंत्रण में नहीं ला सकते। दूसरे शब्दों में जन्म को कृत्रिम ढंग से नियंत्रित करना मृत्यु पर कृत्रिम नियंत्रण करने से सुलभ नहीं है। वैदिक सभ्यता के अनुसार गर्भाधान को धार्मिक नियमों के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए, तभी जन्म दर पर नियंत्रण हो सकता है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि। जो काम धर्म के विरुद्ध नहीं है वह भगवान का स्वरूप है। लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए कि किस तरह संस्कारों के द्वारा वे उत्तम संतान उत्पन्न करें। गर्भ को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जाना चाहिए, क्योंकि इससे पशु सभ्यता का जन्म होगा। धार्मिक नियमों का पालन करने वाला स्वतः गर्भ निरोध का पालन करता है, क्योंकि आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति जानता है कि काम का दुष्प्रभाव विविध प्रकार के दुखों के रूप में होता है। बहु दुख भाज ये भागवत का श्लोक। जो आध्यात्मिक रूप से बड़ा चढ़ा है वह अनियंत्रित यौन में लिप्त नहीं होता। अतः काम को या अधिक संतान के जन्म को बलपूर्वक रोके जाने की बजाय लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, तभी गर्भ निरोध स्वतः होने लगेगा। यदि कोई आध्यात्मिक प्रगति करने पर तुल जाए तो वह तब तक संतान उत्पन्न नहीं करेगा जब तक वह उस संतान को भक्त न बना सके। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पिता न स त्यात। जब तक मनुष्य अपनी संतान को मृत्यु से अर्थात जन्म मरण के चक्र से बचा पाने में समर्थ न हो तब तक उसे पिता नहीं बनना चाहिए। किंतु इसकी शिक्षा कहाँ दी जाती है? उत्तरदायी पिता कुत्तों और बिल्लियों की तरह संतानें नहीं उत्पन्न करता। लोगों को गर्भ निरोध के कृत्रिम साधनों को अपनाने के स्थान पर उन्हें कृष्ण भावनामृत का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, क्योंकि तभी वे अपनी संतानों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझ सकेंगे। यदि ऐसी संतानें उत्पन्न की जा सके जो भक्त बने और जिन्हें जन्म मृत्यु के मार्ग से पृथक रहने की शिक्षा दी जा सके, तो गर्भ निरोध की कोई आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि संतान उत्पन्न करने के लिए मनुष्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। गर्भ निरोध की विधियां व्यर्थ है, कोई संतान उत्पन्न करे या नहीं, कुत्तों और बिल्लियों जैसी जनसंख्या से मानव समाज कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इसीलिए लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दिए जाने की आवश्यकता है, जिससे कुत्तों बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न करने के स्थान पर वे तपस्या करके भक्तों को जन्म दें, इससे उनके जीवन सफल हो जाएंगे। ओम ज्ञानतिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप मह्यं ददाति स्वपदंतिका। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की वांछा कल्पत्रुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्रील प्रभुपाद महाराज की निताय गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं आप सभी उपस्थित वैष्णव वृंद को प्रणाम करता हूं। विशेष प्रणाम मेरा शुद्ध सेवक प्रभु जी को, लाल गोविंद प्रभु जी को और अन्य अनेक उपस्थित जिला प्रभुपाद जी के जो सैनिक है, जो ज्ञान में भक्ति में सभी तरह मेरे से बहुत ही आगे हैं, वो को कोटि कोटि इनवर प्रणाम। और उन लोगों से मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना भी करता हूँ कि कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि ये श्लोक जिसका प्रवचन देने मुझे बताया गया है, पता नहीं अपने दयामूर्ति प्रभु शायद हर समय यही सोचते कि जब कठिन श्लोक आएगा तभी इन्हीं को बुलाने का, नहीं तो नहीं बुलाते। मैंने देखा है जब भी बुलाया जाता है तो मैं पहले सोचता हूँ कोई कठिन श्लोक लग रहा है, मैं तो ऐसे नहीं बुलाएंगे। तो मैं जब श्लोक खोलता हूँ तो पता चलता है कि हाँ वास्तविक कठिन है इसको बोलना। बहुत ही ये होता है, श्लोक को चाहिए इधर उधर बात करे तो भी अच्छा नहीं लगता है कि नहीं वो व्यवस्थित प्रवचन नहीं होगा। एनीवे जो दिया है तो आप लोगों के आशीर्वाद से, जो शिला प्रभुपाद जी बताते हैं विश्लेषण परपट तात्पर्य और उनके वरिष्ठ वैष्णव विशेष करके मत्स्य अवतार प्रभु जो प्रभुपाद जी के शिष्य है वो एक्सपर्ट है इस तरह के प्रवचन देने में। उनका एक आर्टिकल भी बहुत बड़ा फेमस है इस्कॉन जीबीसी को जो उन्होंने सबमिट किया था, तो उन पर आधारित मैं कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे परिस्थिति तो हम सब लोग जान रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कंस की जेल में, जहाँ देवकी और वसुदेव कैद थे, वहाँ उपस्थित हुए, अपनी इच्छा से प्रकट हुए चतुर्भुज विष्णु के रूप में, कोई छोटे बालक के रूप में प्रकट नहीं हुए थे। हम सब जानते हैं देवकी और वसुदेव को, हालांकि ये पता था कि उनका आठवां संतान जो है वो स्वयं भगवान आने वाले हैं, लेकिन उन्हें ये आइडिया नहीं था कि किस तरह वो प्रकट होंगे, चतुर्भुज रूप में होंगे या छोटे से बालक की तरह होंगे, ये कोई आइडिया नहीं था। लेकिन अचानक जब देखा कि ये तो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, भगवान चाहते थे कि इनको पक्का विश्वास हो जाए कि मैं ही प्रकट हुआ हूं, आकर वो भगवान से बातें हुई दोनों की, अनेक स्तुतियां हैं वसुदेव ने की हैं। देवकी माता तो डरी हुई थी और माता प्रार्थना भी करती है कि आप इस चतुर्भुज रूप में क्यों है, आप जल्दी से छोटे नन्हे बालक बन जाइए क्योंकि मुझे तो डर लग रहा है कि कंस आएगा तो क्या होगा। और हम आपको कैसे छुपाएं, हम आपको छुपाना चाहते हैं। अब तक देवकी और वसुदेव, विशेष करके वसुदेव जी बालकों को छुपा नहीं रहे थे, क्योंकि एक वचन दिया था कि जो बालक आएगा हम कंस को सुप्रत कर देंगे। लेकिन यह बालक क्योंकि भगवान है, ये जैसे ही समझ में आ गया तो वो अपना वचन तोड़ना भी चाहते हैं। भक्त लोग भगवान के लिए हमेशा अपना वचन तोड़ने के लिए तैयार रहते, ये भक्तों का इतिहास बता रहा है। अगर भगवान की सेवा, भगवान का कोई कार्य है तो अगर अपना वचन तोड़ना पड़े तो जो सच्चे भक्त होते हैं वो तैयार होते हैं। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कमजोर भक्तों को भी वही आधार लेके हमेशा वचनों को तोड़ना चाहिए, उसके पीछे बहुत सारा विश्लेषण की आवश्यकता रहती है, परिस्थिति का विश्लेषण करना चाहिए। तो भगवान स्वयं उनको याद करवा रहे हैं यहाँ पे कि आपका मैं ये तीसरी बार पुत्र के रूप में अवतरित हुआ हूं, पहली बार या दूसरी बार नहीं, तीसरी बार मैं अवतरित हुआ हूं। क्योंकि सतयुग में जब स्वयं ब्रह्मा ने, जब माता देव की प्रश्नी के रूप में थी और वसुदेव सुतपा के रूप में थे, तब स्वयं ब्रह्मा ने आपको आदेश दिया था कि संतान उत्पन्न करिए और प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति करना यह आपकी सेवा है। क्योंकि उस समय वो प्रजापति थे, प्रजापति का कार्य ही वही संतान उत्पन्न करके प्रकृति में जीवों को वो शरीर प्राप्त करके उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने की सुविधा प्रदान करें। स्वयं ब्रह्मा का आदेश होने के बावजूद वो लोग ये नहीं सोचे कि चलो परम पिता ब्रह्मा ने हमको आदेश दिया है, चलो शुरू कर देते हैं, बच्चे प्राप्त कर देंगे। शरीर संग कैसे करना चाहिए वो वेदों में जो वर्णन है उसके वो ज्ञाता लोग थे, और ज्ञाता होने के कारण उन्होंने ये नहीं सोचा कि चलो आदेश है तो हम अपना कार्य, अपनी सेवा को तुरंत स्वीकार करें। नहीं, शास्त्र कहता है कि संतान उत्पत्ति करने के पहले पति और पत्नी को कड़ी तपश्चर्या करनी चाहिए, मन को भौतिक कलमश से, कामनाओं की इच्छा से बिल्कुल ही स्वच्छ पवित्र करना पड़ता है। और पवित्र करने के बाद, जो पवित्र करने की उसकी जो विधि है वो करने के बाद स्वयं भगवान की चेतना सदैव मन में बसी रहे, उस समय पुरुष को स्त्री से संग करना चाहिए। उस चेतना में रहकर ही इसको, इसको एक विधि के रूप में करना चाहिए, न कि इंद्रिय की तृप्ति के रूप में करना चाहिए। और विधि के रूप में करते हुए यह इच्छा से करना चाहिए कि यह जीव जो आएगा यह भगवान का एक भक्त बने, भगवान की सेवा करके भगवत धाम लौटे, उसका पूरी जिम्मेदारी उठाने की तैयारी के साथ वो एक विधि, वैदिक विधि के रूप में वो संग करता है और पुत्र की प्राप्ति करता है। हालांकि वेदों में अनेक अनेक उल्लेख है कि क्या क्या विधियां हैं, जैसे गर्भदान संस्कार कहते हैं जो बहुत ही कठिन होता है इस युग में करना, इतना आसान नहीं है। कहीं पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ता है, फिर तपश्चर्या में जीवन रहता है, कहीं कितनों दिन तक खाना पीना, ये सब जब तक मन पूरी तरह से स्वच्छ न हो जाए। कलयुग में वो संभव नहीं है। जैसे कैलाश पर्वत के पास नंदीश्वर करके एक ये है लेक, वहां जाके पहले स्नान करना पड़ता है। अब कौन कैलाश पर्वत जाएगा इस युग में, और वो भी नंदीश्वर लेक के ठंडे पानी में स्नान करके पहले अपनी बाह्य पूरी शुद्धि करे, और पवित्र जल में स्नान करना पड़ता है। ऐसे बताया जाता है, वेद कहता है कि वहां पे जो स्नान करता है नंदीश्वर लेक में, कैलाश पर्वत के वहां तिबेट में अभी तो वो पड़ता है कहीं, उस स्थान में स्नान करने से पूर्व जन्मों में अगर हमने किसी भी प्रकार का संतान प्राप्ति किसी पाप माध्यम से, यानी वैदिक विधि को छोड़कर अगर किया है तो वो सारे पाप पहले खत्म होते हैं। वो सारे पाप को खत्म करने के बाद आप अगला वैदिक कार्य शुरू कर सकते हैं। तब कौन जाएगा तिबेट, ये सब संभव नहीं होता है। उसके बाद भी विधियां बहुत कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी ने बताया कि इस युग में अगर माता पिता को ये विधि करनी है गर्भधान संस्कार, तो दोनों को 64 माला जप करना चाहिए, पति और पत्नी दोनों को 64 माला जप करके मन को पूरी तरह से बस में करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की भावना से नहीं, लेकिन एक जीव को भगवान का भक्त बनाने की सुविधा प्राप्त करने की इच्छा से उसे वेलकम करना चाहिए। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं ना कि मैं विवाह करके पुत्र उत्पन्न करने के लिए तैयार हूं, मैं एक नहीं 100 पुत्र उत्पन्न कर सकता हूं अगर मुझे गारंटी है कि ये सभी के सभी जो है वो भगवान के सच्चे भक्त बने और भगवत धाम जाए, तो अन्यथा नहीं। वो बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। मीन्स इतने बड़े आचार्य ये कहते हैं कि ये बहुत कठिन काम है, इसको हम सीरियसली नहीं ले पाते, नहीं समझ पाते, लेकिन बहुत कठिन काम बताया है उन्होंने। तो यहां पे सुतपा और प्रश्नी ने कई कितने सालों तक एक पैर पे खड़े होके भगवान विष्णु का स्मरण किया, तपश्चर्या की, इतनी तपश्चर्या कि स्वयं भगवान अवतरित हुए, विष्णु भगवान वहां पे अवतरित हुए उनके सामने, ये जताने के लिए, बताने के लिए, अब तुम संतान प्राप्त करने के लिए लायक हो, अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आए भगवान, पूछा कि क्या और कोई इच्छा है, तो वो डरे हुए थे, मन में सोच रहे थे कि और कोई संतान आएगा तो क्या हम उस संतान को भगवत धाम जाने का मार्गदर्शन पूरे दे सकेंगे, क्या हम उसे भक्त बना पाएंगे कि नहीं, तो शॉर्टकट और अच्छा मार्ग क्या रहेगा, स्वयं भगवान ही अवतरित हो, कोई प्रश्न ही नहीं आएगा। इसलिए भगवान से ही विनंती करते हैं कि हम चाहते हैं कि आपके समकक्ष बालक प्राप्त हो, या आप ही स्वयं आइए, कहने का अर्थ था आप ही हमारे घर में बालक के रूप में आइए, तो फिर प्रश्न ही नहीं होगा। इनडायरेक्टली ये कहते हैं कि अगर भगवान ही अवतरित नहीं होने वाले हमारे यहां तो हमें बालक नहीं चाहिए। भगवान ने, और इतने उत्साह में थे भगवान की प्राप्ति के उत्साह में कि यहां पे लिखा गया कि 3 बार उन्होंने कहा हमें आपके रूप में एक बालक चाहिए, आपके रूप में बालक चाहिए, आपके रूप में बालक चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु तथास्तु तथास्तु, है ना, 3 बार बालक के रूप में अवतरित होंगे। तो सर्वप्रथम जो अवतार हुआ था प्रश्नी गर्भ सत्युग का अवतार है, वेदों में बहुत प्रख्यात है, आम जनता को पता ही नहीं है कि प्रश्नी गर्भ करके भी कोई विष्णु का अवतार है, वेदों में बहुत प्रख्यात अवतार है। कोई भी वैदिक कार्य करने के पहले प्रश्नी गर्भ को पुकारा जाता था, सत्युग त्रेता यहां तक द्वापर में भी उनका आवाहन होता था। फिर दूसरा है उनका अवतार कश्यप मुनि और अदिति माता, जो यही दो उनका जो दूसरा जन्म है, वहां वामन देव के रूप में प्रकट हुए स्वयं भगवान, ये कथा भी हम सब लोग जानते हैं। और तीसरा इस द्वापर युग के अंत के समय देवकी और वसुदेव यहाँ पे प्रकट है, और उनके सामने ये तीसरा अवतार बालक के रूप में प्रकट हो रहा है। शिला प्रभुपाद जी बहुत सारा विश्लेषण करके यहाँ पे बता रहे हैं, पूरा तात्पर्य उनका विश्लेषण था कि किस तरह कुत्ते और बिल्लियों की तरह मनुष्य समाज को पुत्र उत्पन्न नहीं करने चाहिए। अब ये कहना बड़ा आसान होता है, प्रवचन देना बड़ा आसान होता है, प्रैक्टिकली सत्य हकीकत तो है कि 99.99% लोग जो इस मार्ग को अपना चुके हैं, दीक्षित हो चुके हैं, वो लोग भी ये नहीं कर पाते। इसका दूसरा अर्थ होता है कि हम लोग सीरियस नहीं है भगवत धाम जाने के लिए इसी जन्म में, यही इसका डायरेक्ट इंटरप्रिटेशन है। इंद्रियों को बस में करने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। एक बार एक जंगल में कुछ जानवर गए थे घूमने के लिए। एक चींटी थी, एक रैबिट खरगोश था, एक कैमल था और एक एलिफेंट था, हाथी। ये लोग जंगल में गए। जंगल में कितनी मुसीबतें आ सकती है उसका इनको अंदाजा नहीं था। तो घने जंगल में जब पहुंचे, चारों ओर वृक्ष ही वृक्ष थे और एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। वहां ऊपर में एक फल का वृक्ष था, एक बड़ा फल बन रहा था, एप्पल के साइज का। तो वहां से एक फल गिरा उस वृक्ष से, सबसे पहले चींटी पे गिरा। और जैसे ही चींटी पे गिरा ना वो फल, क्या हुआ रहेगा हम लोग समझ सकते हैं। चींटी बिचारी मर गई, एक मुसीबत आई वो मर गई, खत्म। थोड़ी देर के बाद वापस एक फल गिरा, खरगोश रैबिट के ऊपर गिरा। तो वो मर तो नहीं गया, लेकिन इतना डर गया कि इतना बड़ा मुसीबत मेरे ऊपर टूटा है, डर के मारे भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। आज तक किसी को पता नहीं कहां है, क्या कर रहा है, इतना डर के मारे भाग गया। उसके बाद कभी जंगल में आया नहीं है और आएगा भी नहीं। तीसरे थोड़ी समय के बाद एक फल गिरता है कैमल के ऊपर, तो उसको लगा जोर से, लेकिन न तो वो मरा और ना ही वो डर के भाग गया। थोड़ा सा लगा था, थोड़ा अपना ये जो शरीर को ये किया, अरे लग गया लग गया, थोड़ा ये किया, फल की तरफ देखा और उसको लात मार के फेंक दिया। बोले ये फुकट की मुसीबत मेरे सर पे गिरी है। फिर ठीक हो गया थोड़ी देर के बाद। और थोड़ी देर के बाद एक फल गिरता है हाथी के ऊपर, ना तो वो मरा ना तो वो डरा, ना ही उसको कुछ लगा, कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उसने देखा क्या हुआ, अच्छा फल गिराया, उठाया और मुंह में डाल दिया, खा गया, खत्म। और फिर खुशी खुशी आगे बढ़ने लगा। इस कथा में क्या है पता है, मोरल ऑफ द स्टोरी, कि नाना प्रकार के हम लोग इस्कॉन में भक्त हैं, अपने अपने नाना चेतना के स्तर पे हैं। जब किसी के ऊपर इस माया का आक्रमण होता है, माया का आक्रमण जब होता है, तो जो चींटी जितने छोटी कृष्णमय भावना या चेतना वाला जो भक्त होगा वो तो खत्म ही हो जाएगा, वो तो मर ही जाएगा, भक्ति भक्ति छोड़ के उसका जीवन समाप्त। अरे भाई ये माया का आक्रमण मेरे से सहन नहीं हुआ, मैंने सरेंडर कर दिया, बात खत्म, भक्ति होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो हरि बोल। जब रैबिट जैसा कोई चेतना, थोड़ी ऊंची चेतना लेकिन कमजोर डरपोक चेतना वाला जो कोई भक्त है, उसके ऊपर जब ये माया का आक्रमण होता है, वो तो डर के मारे इस्कॉन छोड़ के भाग जाएगा। हाँ, इस्कॉन से दूर, बाबा नहीं नहीं वहां पे तो ये नियम का पालन करने की बात कर रहे हैं, हमसे नहीं होगा, अपने बस की बात नहीं, वो जिंदा रहेगा, थोड़ा कुछ अपने घर में जाके थोड़ा कुछ भजन कीर्तन साधना करता रहेगा, लेकिन फिर कभी दिखेगा नहीं, कहां है, क्या कर रहा है, कुछ पता नहीं है। कैमल के ऊपर गिरेगा तो उसको असर होगी, उसकी चेतना क्योंकि ऊंची है ना, जैसे भौतिक शक्ति ऊंची है तो यहां भक्त की चेतना ऊंची है, उसको असर जरूर होगी उस आक्रमण की। अरे भाई परेशान कर रहा है ये आक्रमण हमें, माया का ये जो बाण चल रहा है, तीर चल रहा है, ये बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन क्या मैं इस परेशानी से डर के भाग जाऊं, नहीं, सहन करूंगा लेकिन यहीं रहूंगा, देखूंगा, चलो आगे बढ़ना ही है मुझे कुछ भी करके। और हाथी जैसा जो रहता है, हाँ, जिसकी शक्ति, जिसकी चेतना एकदम तंदुरुस्त रहती है, हाँ, जिसकी साधना एकदम स्ट्रिक्ट रहती है, शिला प्रभुपाद जी के नियमों पे आधारित उसका पूरा जीवन है, वो तो उस मुसीबत को भी उठा के खा जाएगा। बोले कुछ फर्क नहीं पड़ा उसको, हो सकता है वो उसको भी भक्त बना डालेगा कि चलो आप भी आओ, हरे कृष्णा भक्त में ज्वाइन हो जाओ, आपका भी जीवन सुधर जाएगा। हाँ, ऐसी शुद्ध चेतना वाले शास्त्रों में अनेक प्रमाण है। हरिदास ठाकुर, अपने हरिदास की बात नहीं कर रहा हूं, हरिदास ठाकुर चैतन्य चरितामृत वाले, शुद्ध चेतना, हाथियों की तरह मजबूत, हाँ, पावरफुल, मुसीबत आई भेजी गई, कुछ फर्क नहीं। देखा क्या मुसीबत है, उठा के खा गए जैसा। क्या है, जप करो, आप भी बैठ जाओ हमारे साथ, है ना। पावरफुल पर्सनालिटी, सीधे जप करके उनको ही वैष्णव बना डालते हैं। कुछ कमजोर चेतना वाले रहते हैं, जैसे मैं जब राधा रास बिहारी मंदिर में था, आज बरसों पहले की बात है, तो वहां कुछ भक्त लोग जब मंदिर ज्वाइन करते हैं तो 6-8 महीने के बाद वो कहते थे कि भाई हम तो यहाँ नहीं रह पाएंगे, क्योंकि यहाँ माया का आक्रमण जुहू में बहुत होता है, हमारे लिए यहाँ रहना मुश्किल है। वो भाग जाते थे, बोले नहीं भैया हम इस मंदिर में नहीं रहेंगे, कहीं और मंदिर में हमको छोड़ दो, चाहे सूरत बड़ौदा या मायापुर वृंदावन, ऐसे दूर जगहों में चले जाते थे। जो भी हो, हर व्यक्ति का पूर्व कई कितने जन्मों में कितना उसने इंद्रिय भोग किया है, उस इंद्रिय भोग के संस्कार पे आधारित उसकी चेतना इस जन्म में रहती है, जिसका निवारण, हाँ, जिसका शुद्धिकरण एक जन्म में शायद संभव ना हो। तो ऐसी चेतना वाले, चाहे चीटी चेतना वाले हो, चाहे खरगोश चेतना वाले हो, ऐसी चेतना वाले व्यक्तियों को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के पवित्र हरिनाम पे अपना मन को लगाएं, भगवान की सेवा करें। जन कल्याण हेतु जितना संभव है उतना अपना एक योगदान प्रदान करें, क्योंकि सभी के लिए यह संभव नहीं होता है कि सदैव हरिनाम जप करें। 99% लोगों के लिए तो रोज की 16 माला करना भी बहुत कठिन काम लगता है, जैसे चींटी पे रोज फल गिरे वैसी हालत हो जाती है उसके ऊपर। 16 माला बहुत कठिन होता है एक्चुअली में, हाँ, माया का आक्रमण सहन करे या 16 माला करे ये समझ में ही नहीं आता, ऐसे ही ज्यादातर लोग हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका सदैव कृष्ण नाम पे मन नहीं लग पाता, उन लोगों के लिए माया का आक्रमण से बचना है तो उन्हें क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ देना चाहिए। लेकिन सेवा का अर्थ ये नहीं है कि चलो सेवा मतलब मुझे कोई बड़ी सेवा मिले, कोई भी सेवा, मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा अति उत्तम होती है, जूते संभालने की सेवा अति उत्तम होती है, ये छोटी जो सेवाएं दिखती है ना वो हृदय को बहुत जल्दी साफ कर देती हैं, पवित्र कर देती हैं, ये हृदय से कलमश को दूर कर देती है। किसी न किसी तरह अपने आप को जन कल्याण में जोड़ना चाहिए। जैसे प्रसाद वितरण की सेवा बहुत भक्त लोग उत्साहित होकर करते हैं, ये बहुत अच्छी सेवा है, हाँ, क्योंकि उसमें है ना मन अपने आप लग जाता है कि भाई ये प्रसाद लाना है, इनको बांटना है, ये करना है, वो करना है, तो इसमें अपना मन जो लग जाता है, तो जिसका मन भगवान की सेवा में लगा है उस मन को और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती इंद्रिय भोग में। जैसे मैंने बहुत बार उदाहरण दिया है, यहाँ प्रसन्न में भी शायद एक बार मैंने बताया कि यहाँ उपस्थित जितने भी लोग हैं उनमें से किसी ने कभी लंदन पे नाइमेक्स क्रूड ब्रेंट का क्या रेट चल रहा है वो सोचते हैं कभी कोई? आप लोग कोई सोचते हैं? कभी सोचते हैं? नहीं सोचते हैं कि भाई लंदन एक्सचेंज पे नाइमेक्स क्रूड ब्रेंट का अभी क्या रेट चल रहा है? नहीं सोचते हैं ना? क्यों? क्योंकि जिस कार्य को हम कभी करते ही नहीं है उसका विचार हमारे मन में आता ही नहीं है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है, हम उससे अनासक्त है। हालांकि यह वस्तु ऐसी है कि हम सभी के जीवन में अति महत्वपूर्ण है भौतिक जीवन जीने के लिए, कि उसका डायरेक्ट रिलेशन हमारे घर खर्च से जुड़ा हुआ है, हाँ, उसका एक एक डॉलर पे ऊपर नीचे होने से हमारे घर का पूरा बजट बिगड़ता रहता है। बड़ा इकोनॉमिक्स है, मैं यहां नहीं समझाऊंगा, ये टॉपिक नहीं है इस समय, लेकिन उससे लेना देना होते हुए भी हम नहीं सोचते क्योंकि हमें उसके बारे में कोई अभ्यास नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई देखा नहीं है, कोई सोचता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन लगा है कहीं अन्य चीजों पे। अमेरिका में क्या हो रहा है किसी व्यक्ति के पर्सनल जीवन में, वो पति पत्नी लड़ाई कर रहे हैं, उसके बच्चे उसके साथ लड़ाई कर रहे हैं, संपत्ति की मारामारी है, इसके बारे में हम लोग कोई सोच रहे हैं? नहीं। क्यों? कोई जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, लेकिन अपने ही कम्युनिटी में किसी का ये हो रहा है तो जिसकी जरूरत नहीं होती है ना वो भी जाके क्या हुआ क्या हुआ जरा बताइए करके उसमें एक दिन बिता डालेगा, उस चेतना को उसमें लगा देगा। तो चेतना एक ऐसी महत्वपूर्ण, हाँ, कॉन्शियसनेस, जीव की संपत्ति है, जिसको बहुत ही अच्छी तरह से सावधानी पूर्वक संभाल के सेवा में हरि नाम में हरि कीर्तन में लगाना चाहिए, तभी जाके वो चेतना शुद्ध होती है और तभी वो चेतना माया के आक्रमणों से बच सकती है हाथी की तरह। यह आत्मा की संपत्ति है और बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति है। अगर किसी भी जीव की सबसे बड़ी संपत्ति है तो वो है चेतना, कॉन्शियसनेस, ना कि धन। हाँ, अंबानी एक्चुअली सबसे बड़ा धनी व्यक्ति नहीं है, या बिल गेट्स नहीं है सबसे बड़ा धनी व्यक्ति, या जॉर्ज सोरोस नहीं है सबसे बड़ा धनी व्यक्ति। सबसे बड़े धनी व्यक्ति है शिला प्रभुपाद, हाँ, या हिज होलीनेस राधा गोविंद महाराज, या हिज होलीनेस राधानाथ महाराज, या हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, ये लोग सबसे बड़े धनी लोग हैं। इनकी चेतना शत प्रतिशत उनकी, उन्होंने उनकी संपत्ति को उन्होंने संभाल के रखा है, अब पूर्णमय कृष्ण के चरण कमलों में लगा के रखी है। यह संपत्तिवान चेतनामय व्यक्ति लोग हैं। इस संस्था में, इस परंपरा में आने के बाद हमें उस चेतना को प्राप्त करना है, और उस चेतना को प्राप्त करने के लिए अनेक विधि विधान यहाँ पे शिला प्रभुपाद जी बताते हैं। उनमें से आज का ये विधि विधान है वो तो कठिन है कि भाई संतान प्राप्ति केवल उसी समय करो जब आपको पुत्र की प्राप्ति के लिए और उसको भगवान का भक्त बनाने की इच्छा पूर्ण हो, अन्यथा मत करो। शिला प्रभुपाद जी ने ये बहुत अच्छी तरह से बताया कि जब मृत्यु का कंट्रोल नहीं है डॉक्टर का, वैज्ञानिकों, वैज्ञानिक लोगों का या हम लोगों का, तो जन्म पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जो आज का विज्ञान कह रहा है कि जन्म पे हम कंट्रोल कर सकते हैं एबॉर्शन के रूप में, चाहे ऐसी क्रियाओं से कि जिससे बच्चा उत्पन्न ही ना हो, पैदा ही ना हो, वो संभावना ही ना रहे, बर्थ कंट्रोल पिल्स हो चाहे जो भी टेक्निक्स हो, तो ये सब फालतू बातें हैं। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि जिसका मृत्यु पे कंट्रोल नहीं है जन्म पे कंट्रोल कैसे हो सकता है। प्रकृति ये कभी तुम्हें सुविधा नहीं दे सकती। वो इच्छा हम करते हैं, सोचते हैं कि हमारे बस में है, लेकिन ये वास्तविक बस में नहीं। कई कितने बार कहीं ग्रहस्थों ने कबूल किया है कि टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के बाद भी उनके वहां पुत्र का जन्म हुआ है, वो साबित ही है कि इम्पॉसिबल है वो कंट्रोल करना। अबॉर्शन अगर कोई सोच रहा है कि इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं तो वो भी गलत है। वो तो का अबॉर्शन होना था, इनकी इच्छा थी, प्रकृति ने उन दोनों को इस तरह से अरेंज करके दिया, इसको लगता है मैंने कंट्रोल किया, वास्तविक वो कंट्रोल नहीं था, वो तो प्रकृति एक कार्य कर रही थी अपना। जैसे वो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता ये समझ के चलता है कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, वैसे ये सोच रहा है कि मैंने कंट्रोल किया, वास्तविक ऐसा कंट्रोल नहीं था, नहीं होता है, वो होना था। और कई बार गृहस्थ ये भी कंप्लेन करते हैं कि हम लोग कितना कोशिश कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, प्राप्त ही नहीं हो रहा है। लीडर्स लोगों का ये खास प्रॉब्लम है अपने समाज में, नहीं होता है क्योंकि हमारे कंट्रोल में है ही नहीं ये सब चीजें। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने कंट्रोल में जन्म मृत्यु जरा व्याधि को रख सकते हैं, असंभव है। हमारे संभवता में, शक्ति में क्या है, केवल अपनी चेतना को शुद्ध करना, हरि नाम से करो और हरि प्रसाद से करो। प्रसाद वितरण एक बहुत अच्छी सेवा है जिसका मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, लेकिन साथ साथ में न केवल मैं इस मंदिर की परिस्थिति को बता रहा हूँ, ये मत सोचना कि यहाँ की परिस्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूँ। 99% इस्कॉन सेंटर्स में जो होता है उसका एक ब्रॉड पिक्चर बता रहा हूं कि प्रसाद वितरण में लोग जो है ना सावधान नहीं रहते हैं। सम्माओ और अदरवे लोगों के मन में यह भावना आ जाती है कि प्रसाद वितरण करना करने के लिए मैं सक्षम व्यक्ति हूं, मेरे कंट्रोल में है, हाँ मुझसे धन आ रहा है, मुझसे प्रसाद बन रहा है और मुझसे वितरण हो रहा है, मैं इसका अन्न देवता हूं, अन्नपूर्णा माता का सच्चा भक्त अगर कोई है तो मैं ही हूं, हाँ उनकी कृपा प्राप्त मैंने ही की है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है एक्चुअली, हाँ? वो अन्नपूर्णा देवी भी हाथ जोड़ के कृष्ण के सामने खड़ी रहती है, उस कृष्ण का प्रसाद का वितरण करने का सेवा केवल आपको दिया गया है। सम्माओ और अदरवे, वो भी बिना किसी क्वालिफिकेशन का, आपको केवल आपके आपके शुद्धिकरण के लिए उसको बिठाया गया है। सम्मा और अदर्वे, जब गौर गोविंद महाराज ने संन्यास दीक्षा लिया, प्रभुपाद जी ने दिया, तब कई भक्तों ने कहा कि अरे हम लोग कभी कितने सालों से भक्त है, हमको आपने संन्यास नहीं दिया, और ये अभी अभी 9 महीने पहले भक्त हुए हैं, 8 महीने पहले, और इनको आपने संन्यास दीक्षा दे दिया, ये कैसे हो सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि आप सभी लोग भक्त नहीं थे, मैंने बनाया आपको, जबरदस्ती चुना है आपको, जबरदस्ती बिठा के बना रहा हूं, और ये जन्मों जन्म का भक्त है। दोनों में अंतर है कई कितना। वैसे कभी हम लोगों को चुना गया है, जबरदस्ती बिठाया गया है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करो, हम लोग कोई जन्मों जन्म के लायक व्यक्ति नहीं है, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन इम्पॉसिबल है। वेद कहता है कि घर में खाने के पहले बाहर जाके चिल्लाओ कि कोई भूखा है, उसको कम से कम एक जीव को तो एक प्लेट खाना रोज घर से दो। अगर कोई व्यक्ति ये रोज कर रहा है तो उसको हम कह सकते हैं कि ये जन्मों जन्म का प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का पक्का सच्चा अधिकारी है। एक दिन नहीं कर रहा है कोई गृहस्थ इस्कॉन में। वृंदावन मंदिर में, कृष्ण बलराम मंदिर के गेट के सामने कृष्ण की गैया घास नहीं मिल रहा है, प्लास्टिक खा रही है, और उसी वृंदावन मंदिर में यही फॉरेनर लोग और हम सब भक्त लोग पिज्जा खाते हैं उसी गोविंदा गेट के स्टॉल पे। हम लोग पिज्जा खाते हैं 100 रुपए का, हमारी सामने ही 100 गैया हम देखते हैं, कितनी गैया उधर खड़ी रहती है, प्लास्टिक खा रही है, कचरा खा रही है, जूठा खा रही है, और हम अपने आप को भक्त समझते हैं, वृंदावन जाके आए तो बहुत बड़ा ये बन जाते हैं, जैसे कि मेरे जैसा कोई अच्छा भक्त नहीं है, ब्रज जाके आया। लेकिन उस गैया की तरफ कोई नहीं देख रहा है, सोच रहा है कि चलो मैं 10,000 अपने लिए खर्च किया तो 1,000 रुपया चला मैं गैया को स्वयं हाथ से खिलाऊं, वो कोई नहीं सोच रहा है। तो कैसा तो अन्नपूर्णा का भक्त हो गया, ब्रज में जाकर ब्रज की गैया की रक्षा के लिए, जहां स्वयं भगवान बोले मैं जूते नहीं लूंगा, मैं उनके लिए ये करूंगा वो करूंगा, और वहां हम लोग पिज्जा खाते हैं मजे में, गोविंदा में जाके रेस्टोरेंट में 250-300 की प्लेट भोजन लेते हैं, लेकिन हराम बरोबर अगर किसी पूरी यात्रा में 100 रुपए का अपने हाथ से कुछ खाना गाय को खिलाया हो तो, है ना, बड़ा विश्लेषण करने लायक परिस्थितियां हमारी संस्था में निर्माण होती रहती है। प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं तो कई कितनी बार मैं देखा है कई मंदिरों में डांट देते हैं पब्लिक को, लाइन में खड़े हैं, चाहे किसी भी इच्छा से आया, चाहे यही इच्छा से आया कि मैं केवल प्रसाद खाने के लिए ही गया हूं, भैया न्योता तो आपने ही दिया है, मंदिर आपने खोला है, आपने ही प्रोग्राम आयोजन किया है, आपने ही अनाउंस किया है प्रसाद, तो वो प्रसाद खाने के लिए आया। क्यों भक्तिमान के कैंटीन के बाहर कोई लाइन नहीं लगा रहा है प्रसाद खाने के लिए, क्योंकि वहां सबको मालूम है किसी ने वेलकमिंग न्योता नहीं दिया है, वहां 30 रुपए की कूपन है, वहां कोई नहीं जा रहा है, यहां सबको मालूम है कि यहां प्रोग्राम के बाद प्रसाद मिलने वाला है, यहां का मतलब सिर्फ यहां नहीं है, पूरे इस्कॉन सेंटर की बात कर रहा हूं। तो क्यों हम प्रेम से प्रसाद नहीं दे सकते, क्या प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, क्यों हम डांट के ही प्रसाद देना चाहते हैं, क्यों हम उसका डिसरेस्पेक्ट या उसका अपमान करके ही उसको प्रसाद देना चाहते हैं, क्या कारण क्या है, मेरे को अभी तक समझा ही नहीं है। जब खर्चा कर लिया है, मेहनत कर लिया है, प्रसादम तैयार है, देना निश्चित है, तो क्यों ना अतिथि देवो भव, और ये अतिथि भव जो है वो देवता नहीं, तो कम से कम हरे कृष्णा मंदिर में आया हुआ जुड़ा हुआ आत्मा ये भक्त है, इसको हम प्रेम से अच्छी तरह से आगता स्वागत के साथ क्यों प्रसाद नहीं दे सकते। ये प्रॉब्लम अभी मेरे को नहीं समझा है, मैं बहुत कोशिश किया इसको समझने के लिए। संत तुकाराम की एक बार मैंने घटना आपको बताई थी, संत तुकाराम के जीवन में इतनी गरीबी थी भौतिक दृष्टि से कि उनके अपने बच्चों के लिए घर में 100 ग्राम चावल भी नहीं रहता था। मैं कथा पहले बता चुका हूं इसलिए स्पीड में जाऊंगा, और एक गुरु अपने 100 शिष्यों के साथ आकर संत तुकाराम को बताए कि हम आपके घर में आज प्रसाद लेंगे, जबकि घर में 100 ग्राम चावल नहीं अपने दोनों बच्चों के लिए, तो भी उन्होंने माता जी को कहा कि पकाओ, बोले 100 ग्राम है केवल, पकाओ। कितना ऐसा दया भाव से बोले पकाओ और विठल को भोग लगाओ। पकाया, विठल को भोग लगाया, 100 ग्राम रोल केवल डिस्ट्रीब्यूट ने खुद गए थे अपनी पत्नी को लेकर। 100 जो आए थे जिससे कोई जान पहचान नहीं थी और कोई भक्त भी नहीं थे, ब्रह्मवादी या मायावादी कोई रहे होंगे, 100 जनों को लाइन में बिठा के एक एक चम्मच डिस्ट्रीब्यूट किया था। आपको मैंने डिटेल में कथा यहां कई बार बताई है। सिस्टमेटिकली 100 जनों का भर पेट प्रसाद हुआ था और उसके बावजूद भी सब लोग खा के पूर्ण तरह संतुष्ट होके आशीर्वाद देके जब 100 जन चले गए ना, उसके बावजूद भी उस बकेट में 100 ग्राम चावल जो शुरुआत में था उतना ही था उसमें। ये सत्य घटना है उनके जीवन की। वहां से हमको ट्रेनिंग लेनी चाहिए प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले को कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या कॉन्सियसनेस होनी चाहिए, क्या चेतना होनी चाहिए, क्या हमारा हृदय का भाव होना चाहिए, परम करुणा होनी चाहिए। ये नहीं सोचना कि हम अन्न दे रहे हैं, ये सोचना चाहिए कि एक जीव को भगवान से जुड़ने का एक लिंक लगा रहे हैं हम लोग, तार जोड़ रहे हैं। जो एक भगवान से बिछड़ा हुआ जीव है उसको मोबाइल कनेक्शन करके लगा रहे कि ये पिता आपका पुत्र इधर है, पुत्र आपके पिता इधर है, जोड़ रहे हैं। देने वाले तो सब कुछ वही है, अन्न उनका है, शरीर उनका है, चेतना उनकी है, बुद्धि उनका है, सिर्फ देने के लिए हमें क्यों कष्ट होता है ये नहीं समझ रहा है अच्छी तरह से। सारे सभी सेंटर्स का यही प्रॉब्लम है, 99.99%। बहुत कम जगह में ये प्रेम से प्रसाद का वितरण होता है, विच इज अ लैकिंग लिंक इन इस्कॉन। फिर जब कोई घटना घटित होती है तो सब लोग चिल्ला रहे हैं, अरे इसने ये किया वो किया। जरूर उस व्यक्ति के कुछ प्रॉब्लम्स, अपराध, गलतियां होगी, कुछ परिस्थिति निर्माण हुई रहेगी, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेदार होते हैं। कहीं ना कहीं हम भी कुछ गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को छोड़ के हम केवल उस व्यक्ति को देख रहे हैं, उसकी क्या गलती है। संस्था भक्तों से बनती है, ना दीवालों से, ना मंदिरों से बनती है। भक्त लोग अगर सुखी, संतुष्ट और आध्यात्मिक स्तर पर नहीं है तो संस्था का कोई मतलब नहीं हो जाता, बिल्कुल माइनस हो जाता है। संस्था है भक्तों से जो अच्छी साधना करते हुए सदैव प्रसन्न रहते हुए समाज में सबको एक उदाहरण स्थापित करते, देखिए हम भक्त लोग कितना प्रसन्न है। कई बार मैंने देखा है यहां पे भी और कहीं जगह में प्रसाद के लिए इतना दुर्व्यवहार किया जाता है ना लोगों से, बहुत दुखद घटना है। उसका परिणाम यही आएगा, ऐसा ही होता रहेगा। हम अपने आप को मूर्ख बनाते रहेंगे कि हम भक्त बन रहे भगवत धाम जाएंगे। उसके हृदय में क्या करुणा होती है भक्तों के हृदय में। शिला प्रभुपाद जी जब भुवनेश्वर गए थे और गौर गोविंद महाराज उस भुवनेश्वर के जंगल में लैंड पे एक छोटी सी झुपड़ी में बैठे थे और वहां हजारों लोग, बच्चे लोग जिन्होंने कोई शरीर पे कपड़े भी नहीं पहने थे और गंदे, नाक से सब लीट निकल रही है और खिचड़ी थोड़ी सी, हाँ दोना जितनी खिचड़ी मांगने के लिए आए थे, हाँ खाना दो करके, प्रभुपाद जी ने देखा तब उनकी आंखों से अश्रु बहे थे और रोते हुए उन्होंने गौर गोविंद महाराज को बताया कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, एक चाराना भी जेब में नहीं है इस कौन संस्था का उस समय, कुछ भी करो, कैसे भी करो, लेकिन ये खिचड़ी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, ये यहाँ पे चलते ही रहना चाहिए। ये लोग जो रोज आते हैं ना, ये भूखे कभी वापस नहीं जाने चाहिए किसी भी परिस्थिति में। मंदिर का निर्माण बाहर करना, लेकिन यहां से कोई भूखा वापस न जाना चाहिए। वो हाई स्टैंडर्ड जो कंपैशन का रहता है ना, मेरा तो मेरे बस में चले तो मैं एक आदेश ही बना डालूं कि इस्कॉन में जो जो लीडरशिप पोजीशन में है उन सबको श्रीला प्रभुपाद जी के जितने भी, उनके जीवन चरित्र पे जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, सबसे पहले उन सबको पढ़ लेना चाहिए। उनकी एक सिस्टमेटिक उनकी परीक्षा होनी चाहिए और वो परीक्षा सब हो जाने के बाद ही उसको कोई एक लीडरशिप पोजीशन देनी चाहिए। जैसे हम लोग कहते हैं ना, ब्राह्मण दीक्षा के लिए आजकल इस्कॉन कहता है ना कि भाई ये भक्ति शास्त्री होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए, एक एग्जाम देते हैं, पेपर सब लोग पूछ रहे थे मुझे, ऐसा जो एग्जाम है ना उससे पहले तो एग्जाम लीडर्स के लिए होनी चाहिए। और कौन सी एग्जाम, भक्ति शास्त्री, कृष्ण तत्व नहीं, वो तो बहुत ऊंची बात है, ये हमारे बस की बात नहीं है कृष्ण तत्व समझना। न भगवत गीता, न श्रीमद भागवतम, न चैतन्य चरितामृत, न चैतन्य भागवत, प्रभुपाद जी के जितने भी ग्रंथ है प्रभुपाद जी के जीवन पे, लीलामृत, हरिशौरी जो उनके शिष्य थे हरिशौरी प्रभु जिन्होंने लिखी है ट्रांसेंडेंटल डायरी, जय शिला प्रभुपाद, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट, ये सिलेबस में होना चाहिए सब किताबें। इनको पहले पढ़ो, एक एक पत्ता पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, इसको अच्छी तरह से समझो कि शिला प्रभुपाद जी का मिशन क्या था, मूड क्या था, कितनी कंपैशन थी, कितना दरिद्रता, कितना वो दया का ये भाव था कि ये दरिद्रता कैसे दूर करनी है लोगों की, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दरिद्रता दूर करने का। इसको इसको अलग मत करो, नहीं हम तो आध्यात्मिक संस्था है, हम तो केवल आत्मा का कल्याण ही सोचेंगे, भौतिक कल्याण की बातें कौन करता है, ये सब भौतिकवादी फिलान्थ्रोपिस्ट और वो संस्थाओं में होता है। फिलान्थ्रोपी का अर्थ ये है कि वो लोग आत्मा का कल्याण के बारे में कोई डिस्कशन या चर्चा प्रचार कुछ नहीं करते, केवल भौतिक ही करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक का अर्थ यह नहीं कि केवल अध्यात्म का करते हैं और फिलान्थ्रोपी या भौतिक को साइड में फेंक देते हैं, छोड़ देते हैं। ये गलत मिस इंटरप्रिटेशन हमने निकाला है। आध्यात्मिक संस्था का अर्थ है दोनों को साथ में रखकर, दोनों को साथ में लेकर, जैसे दो पटरी पे ट्रेन चलते हैं उस तरह से चलना चाहिए। शिला भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कहते हैं कि जब तक व्यक्ति भूखा है, उसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, उसके पास ठीक से रहने की व्यवस्था नहीं है, अन्नमय स्थिति में है, उसको तुम कहो हरे कृष्णा, जबरो असंभव है, वो भक्ति साधना कुछ नहीं करेगा। और ये मैं इस्कॉन के इतिहास में देखता हूं, जो अन्नमय स्थिति में है, जो अन्न के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो बहुत ज्यादा दिन ठीक से भक्ति नहीं कर पाते, वो खींचते हैं आर्टिफिशियली, दबाव में, फोर्सफुली। उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए आत्मा का कल्याण के साथ साथ में। अब ये इस समय तो हम भौतिक स्थिति में है ना, हर एक व्यक्ति का जीवन में लक्ष्य रखता है कि पढ़कर डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनो। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नर्सरी के लिए 3-4 साल का लायक हुआ कि तुरंत ही डॉक्टर की किताब उसको दे दो, बस यही पढ़ना है तुम्हें और यही करना है, और आज से प्रैक्टिस में भी आ जाओ, मैं कैसे इंजेक्शन मार रहा हूं देखो, मैं कैसे दवाइयां दे रहा हूं देखो, आपको डॉक्टर बनना ही है इसी जन्म में, अभी 10 साल के अंदर तुम डॉक्टर बन जाओगे। इम्पॉसिबल है, असंभव है क्या पॉसिबल? सिस्टमैटिक प्रोग्रेस होता है। वो नर्सरी में जाएगा, ABCD सीखेगा ही, उसको SSC का एग्जाम पास करना ही है। मूर्ख नहीं है बोर्ड में जो सिलेबस डिजाइन करते हैं वो लोग। अगर डॉक्टर बनना है तो सीधा मेडिकल में क्यों नहीं डाल देते, क्यों ज्योग्राफी सिखा रहे, क्यों हिस्ट्री सिखा रहे, क्यों और कोई सब्जेक्ट, आर्ट क्राफ्ट से सब सिखा रहे, उसका कुछ रहेगा इंपॉर्टेंस? SSC के बाद HSC तुमको करना ही है, उसके बाद 4 ईयर्स करना ही है, तब जाके डॉक्टर बनता है। ये रातों रात भक्त बनाने की स्कीम हम खोल के बैठ जाते हैं ना कभी कभी, पॉसिबल नहीं होता है सबके लिए। कोई रहते हैं गौर गोविंद महाराज जैसे, वो बहुत कम बिरले रहते हैं, और उनके लिए हमको स्कीम खोलने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बनते हैं। क्यों? क्योंकि वो है, बनाना नहीं है उनको, वो है। हमारी स्कीम तो उनके लिए ही है जो नहीं है, तो जो नहीं है उनके निचले स्तर से देखो कि वो कौन से स्तर पे है, चींटी के स्तर पे है, खरगोश के स्तर पे है, वो चींटी के स्तर पे, और उसके ऊपर फल फेंक दिया, भाई ये फल खाओ मजा आएगा, आनंद आएगा तुमको, तुमको खाने का नहीं है ना, तुम्हारे पास ये लो फल, तुम्हारे ऊपर फेंक दिया। अरे वो क्या फल खाएगा, वो तो बेचारा मर जाएगा। अनेक विश्लेषण करने की आवश्यकता है, हालांकि समय कम है, मैं ज्यादा नहीं कर सकता हूं समय के अभाव की वजह से, लेकिन बारीकाई से सोचिए कि हम लोग क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, उन गलतियों को कैसे सुधारें और कैसे भक्ति में आगे बढ़े, ताकि कोई एक नया कोई ऐसा व्यक्ति तैयार ना हो जो संस्था का विरोध आम जनता के सामने प्रकट रूप में कर रहा है। हृदय में तो ऐसे, मैं आपको इसी मीरा रोड में 1000 लोग बता दूं कि जिस हृदय में वही भावना है संस्था के प्रति, नफरत की भावना, प्रकट नहीं कर रहा है, प्रकट कोई दिमागी हालत खराब होगी वही कर पाता है, लेकिन हृदय में ये भावना वाले, मैं इसी यहां पे ही आपको 1000 लोग दिखा सकता हूं, पूरे वर्ल्ड में तो अनेकों अनेक है। मैं हिस्ट्री दोहराना नहीं चाहता हूं, आनंदा ने ऐसे ही सुसाइड नहीं किया था, या ऐसे बहुत लोग हैं जो इसी भावना को लेकर चल रहे हैं। हेट्रेड, ये हेट्रेड वो आए तभी नहीं था उनके हृदय में, हम लोगों ने पैदा किया, वो अपना जीवन समर्पण करने के लिए आए थे सब लोग, लेकिन समर्पण नहीं कर पाए और हेट्रेट एक ऐसा भाव हृदय में, विरोध का भाव जो पैदा किया वो हमने किया है, अपने व्यवहारों से किया है, अपनी गलतियां उसमें ज्यादा है, सामने वालों की कम है। तो हर सेंटर में ध्यान रखना चाहिए, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशली, क्योंकि वही एक ऐसा बारीक डेलिकेट ट्रेड है ना, कि वहां पे हर व्यक्ति डेलिकेटली मीन सेंटिमेंटली अफेक्ट होता है। इमोशनल्स तो रहते ही है सबके, हाँ, इमोशंस को कैसे टैकल करना वो एक ट्रिक होनी चाहिए, वो प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ने के बाद ही आएगी। क्योंकि हजार जो मैंने व्यक्ति बताया ना कि जो हेट्रेट हृदय में लेके घूम रहे, धोती कुर्ता तिलक लगा के आपके यहाँ रोज आने वाले ही है, लेकिन वो हेट्रेट वाले को मैंने जब भी पूछा है, वन टू वन हार्ट टू हार्ट चैट किया है, जब भी चैटिंग किया है, तो उन्होंने प्रसाद का ही रीजन बताया है कि इसी कारण से हम नफरत करते हैं, हमारे साथ ये दुर्व्यवहार हुआ है। बहुत ही डेलिकेट आइटम है, बहुत ही डेलिकेट, उनको देवता समझ के आपके ऊपर उपकार करने के लिए है, आपको भगवत नाम की टिकट देने के लिए आए हैं, ये सोच के उसको देवता की तरफ बिठा के प्रेम से प्रसाद दीजिए, कहीं पे कमी हो गई हाथ जोड़ के माफी मांगिए, क्षमा करना, ये आज किसी कारण से हम आपको नहीं दे पा रहे। हम लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे केदारनाथ का कोई बहुत बड़ा भूकंप हुआ है, वहां सब 10 दिन के भूखे हैं और मेरे पास ही खिचड़ी है और मैं ही खिचड़ी दे रहा हूं, ए चलो सब लाइन में आ जाओ, देना लेना है तो लो, नहीं तो चलो, आ जाते हैं कहां से कैसे। एक एक यहाँ के लीडर ने मुझे एक बार बताया, अरे सब भूख मरे रहे, घर में खाना नहीं मिल रहा, इसलिए हर प्रसाद के टाइम पे आ जाते हैं, ऐसे बताते डायरेक्ट लीडर वर्षों के पुराने। एक ग्रंथ उसने अपने जीवन में प्रभुपाद जी का पूरा नहीं पढ़ा होगा, गारंटी के साथ बता रहा हूं मैं, गारंटी 100% लीलामृत पूरा नहीं पढ़ा रहेगा, क्योंकि एक बार भी लीलामृत पढ़ा ना, ये शब्द उसके हृदय से निकल ही नहीं सकते, सिवाय के हृदय की जगह पे समाऊ प्रकृति ने पत्थर बिठा के इंसान को जिंदा रखा रहेगा तो पता नहीं, हृदय पिघल जाएगा अगर प्रभुपाद जी लीलामृत पढ़ेंगे, ट्रांसेंडेंटल डायरीज पढ़ेंगे। कोई प्रश्न है, किसी का टीका टिप्पण कमेंट? फल का जिम्मेदार तो वृक्ष ही होता है भैया, मूल ही होता है, शॉर्ट एंड स्ट्रिक्ट आंसर। कैसे लोगों को हो ही रहा है, हो जाएगा नहीं, हो ही रहा है, फल ऐसे ही कभी नहीं आता है। आप कभी पेड़ में देखा कि जमीन से एक फल निकला? नहीं निकलता है, रूट स्टेम ब्रांचेस फ्लावर एंड देन फ्रूट। जिम्मेदारी हम लीडर्स लोगों की कहीं ना कहीं पे है, उसको स्क्रूटिनाइज करके वहां सॉल्यूशन का ज्यादा जरूरत है। इसलिए मैंने कहा ना, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़कर समझकर उसकी एग्जाम लेकर उसका हृदय 10 बार चेक कर लो कि ये प्रभुपाद के मिशन को समझा कि नहीं समझा। अगर वो समझा है तो उसको लीडरशिप का पोजिशन दो। ऐसा नहीं भाई, आ क्या है, किधर है, कहां पे है, अच्छा आ जा बैठ जा, 2 साल में लीडर भी बना दिया उसको। एक ग्रंथ नहीं पढ़ा, एक लीला नहीं पढ़ी है। कल की घटना जो हुई, अगर वही घटना लीलामृत में कब हुई थी, सिमिलर, तब प्रभुपाद जी ने और क्या किया था, भक्तों ने क्या किया था, प्रभुपाद जी ने उस समय उनको क्या करने का आदेश दिया, वो सिमिलैरिटी किसी को पता है? यहां विग्रह की बात चली, वहां स्वयं प्रभुपाद बैठे थे, व्यक्ति बैठे थे, तब प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिया? उस अपराधी व्यक्ति का पागल की स्थिति, मानसिक स्थिति सेम थी, बल्कि उसकी खतरनाक थी, कौन जानता है, बताइए लीलामृत से तब प्रभुपाद जी ने क्या किया? अगर नहीं जानते हैं तो कृपया जाके पढ़िए और उसके बाद एक्ट करिए। जीसस बाइबल में भी कहते हैं ना, जब वो सूली पे चढ़ रहे थे या उनको मारा जा रहा था, तब जो उनके जो पक्ष वाले थे, जब उनको मारने गए, तब जीसस ने क्या बताया उनको? क्या बताया, पता है किसको? कौन मार सकता है उनको? जिन्होंने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया, जिन्होंने अपने जीवन में कोई गलती नहीं, 100% जो प्योर है, क्योंकि जीसस स्वयं 100% प्योर होने के बाद भी रिएक्ट नहीं कर रहे, तो दूसरों की तो बात ही कहां आती है। समवेयर परिस्थिति को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हुए, वहां से डिस्कशन करते हुए, विश्लेषण करते हुए यह समझना चाहिए कि प्रॉब्लम किधर से शुरू हुआ था, कहां से हुआ था, किसका है। दोनों बाजू से होगा लेकिन ज्यादा कहां का है, उसको टैकल करो और साइमल्टेनियसली इसका प्रॉब्लम कैसे करके, अगर वो सुधर रहा है तो सुधरने की परिस्थिति निर्माण करो, नहीं है तो छोड़ दो, जाने दो। लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं मिला है कि गलती भयंकर हुई है। व्यक्तिगत रूप में जब प्रभुपाद थे तब ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है, लीलामृत पढ़ के देखिए जरा जाके, एक ड्रग एडिक्ट व्यक्ति प्रवचन में, प्रभुपाद स्वयं प्रवचन दे रहे हैं, बीच में बैठा हुआ, उसने ऐसा ही दुर्व्यवहार करने का चेष्टा किया था, तब प्रभुपाद जी ने कैसे रोका था, क्या किया था। सीधे हम लोग ये, मैं किसी व्यक्तिगत किसी को नहीं बता रहा हूं, लेकिन सीधे हम लोग भगवत गीता, भागवत के प्रिंसिपल्स को पढ़ के अपने आप को बहुत स्कॉलर समझ के अपने आप को ये बता रहे कि हम तत्ववेता है। प्रभुपाद जी को जाने बिना एक्चुअली कोई भगवत गीता भागवत हम जान ही नहीं सकता, असंभव है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। श्रीला प्रभुपाद जी को पहले जानिए, ग्रंथों को पहले पढ़िए, सारी किताबों को पढ़िए, एंड देन टेक अ लीडरशिप पोजिशन, देन गो एंड डू समथिंग, एंड देन इफ यू आर अनेबल टू टेक अप लीडरशिप पोजिशन ड्यू टू सर्कमस्टेंसेस इन द सोसाइटी, देन बेटर नॉट टू टेक दैट पोजिशन। हाँ, नहीं तो एक अपना अलग से एक छोटा सा केंद्र अच्छी तरह से चलाइए, एटलीस्ट वो एक छोटा सा केंद्र रोल मॉडल होना चाहिए कि ये इस कौन है, वहां जाके कोई व्यक्ति अनुभव करके आए तो उसको लगना चाहिए कि ये मुझे लगता है इस कौन है। बहुत ऐसी कम झलकें कहीं कहीं दिखती है, जैसे आप तिरुपति मंदिर में एक बार मैं गया हूं केवल, नीचे रेवती रमन प्रभु जी जहां प्रेसिडेंट है वहां पे मुझे एक झलक मिली कि लगता है कि ये इस कौन सेंटर है, कुछ मतलब जानते हैं लोग यहाँ पे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्चुअली मैं जाके तो लड़ाई करके किया था, पहली बार ही गया था, कुछ मतभेद हुआ था, मैंने रिएक्ट किया था, मैंने लड़ाई किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से, हालांकि वो मुझे जानते नहीं थे, कुछ नहीं पता था कि मैं कितने सालों का हूं या कहां कहां रह चुका हूं, कौन सी पोजिशन, कुछ नहीं पता था, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह से प्रेम से बिठाया, समझाया, जिस सुविधा के लिए मैंने दो तीन जो मेरे साथ थे उनके लिए लड़ा था उनको वो सुविधा दी, मुझे दी, प्रसादम अच्छी तरह से दिया, और बाद में बातचीत की, बातचीत करके उनको पता चला, दूसरे दो मेरे साथ थे उनको, उनके द्वारा कि ये प्रभु जी प्रवचन देते हैं, तो उन्होंने मुझे उस दिन श्रीमद् भागवतम प्रवचन देने के लिए भी जबरदस्ती बिठाया, नहीं आपको ही देना है करके। तो वहां मुझे लगा कि एक्चुअली मैं रॉन्ग था, मैंने रिएक्शन गलत किया था, लेकिन इन लोगों ने सही व्यवहार करके इस पूरी स्थिति को सुधारा, समझाया और दोनों के हृदय को निर्मल कर दिया। वहां एक झलक देखी थी उस समय जब ये नया मंदिर बना नहीं था, बड़ा वाला, उसके पहले की बात कर रहा हूं, वो एक एग्जांपल था, ऐसे बहुत 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 कम। जैसे रिसेंटली हम लोग निगड़ी मंदिर गए थे तो वहां मुझे प्रसादम जिस तरह से उन्होंने दिया ना, तीन बार दिया, हम लोग एक 1.5 days रहे थे तो तीन बार उन्होंने जो प्रसादम दिया ना वो मुझे टच कर गया, हृदय को छू गया। मेरे साथ मेरे मित्र भी थे, विनोद उपाध्याय, पूछिए, उन्होंने भी आके बताया कि हाँ मुझे ये हृदय में छू गया कि किस तरह इन्होंने हमको प्रसाद हम तीन बार सौ किया। वो अलग बात थी कि इन लोगों को पता था, वो लोग जानते थे मेरा इतिहास, तो शायद उस वजह से दिया, लेकिन और भी लोग थे मेरे साथ जिनको वो लोग जानते ही नहीं थे, पता ही नहीं है कौन है, और मैंने भी कोई बताया नहीं था, लेकिन वो टचिंग था। तो वो टचिंग जब होगा ना तब वो व्यक्ति आपको हेट्रेड नहीं, प्रेम करने लगेगा। आप उसकी स्थिति तो देखिए, चीटी की है या खरगोश की है या कैमल की है, हाथी की। अब जो हरिदास ठाकुर है उसके सामने आप अप्सरा को क्या, स्वयं माया देवी को बिठा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो मायादास है जिसका नाम भले ना कुछ भी हो लेकिन उसको एक एक कुड़ी कुब्जी को भी बिठा देंगे तो वहीं फेल हो जाएगा, वो चीटी की चेतना वाला है, दुड़ुम गिरा के खत्म। परिस्थिति के हिसाब से ही व्यक्ति को चलना चाहिए, वो समझने की कला होनी चाहिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।